ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 से अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 26 और 27 श्लोकों की चर्चा करेंगे। हमें काफी सारी चर्चा करनी है, तो जब हम लोग आवृत्ति करेंगे तो एक बार प्रभु जी और एक बार माता जी, उसके बाद फिर हम चर्चा को शुरू करते हैं। श्लोक दिख रहा है सबको, 26वां श्लोक स्क्रीन पे है।
भुंजानः प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शब्दार्थ बहुत स्पष्ट है। भुंजानः खाते हुए, प्रतिबन पीते हुए, खादन चबाते हुए, बालकम बालक को, स्नेह यंत्रितः स्नेह द्वारा बंधा हुआ, भोजयन खिलाते हुए, पाययन पीने के लिए कुछ देते हुए, मूढः मूर्ख व्यक्ति, न नहीं, वेद जान पाया, आगतम आ गई है, अंतकम मृत्यु। अनुवाद, जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। इस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह नहीं समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सर पे है। तात्पर्य में जाने से पहले इसी पर हम थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं कि जब व्यक्ति इस जगत की क्रियाओं में बहुत अधिक व्यस्त रहता है तो न वेदा गत अंतकम। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, जब कार में जाएं तो शीशे चढ़ा लीजिए, शीशे चढ़ा लीजिए और अब देखिए कि सारे बाहर की आवाज म्यूट हो जाती है और लोग इसी प्रकार से अपनी विभिन्न क्रियाओं में लगे रहते हैं और तब हम इंग्लिश में कहते हैं इसे रिफ्लेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्शन का हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, प्रतिबिंब नहीं, हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, विचार करते हैं कि देखिए ये लोग कितने व्यस्त हैं बिजनेस करने में, खरीद फरोख्त करने में और इस जगत के बहुत सारी क्रियाएं करने में, लेकिन इस बारे में विचार नहीं कर रहे हैं कि मृत्यु आ रही है या मृत्यु के बाद हमें कहां जाना है। किसी आप
ये मृदंग अंदर बजना बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। मृदंग बजाने का समय, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब मृदंग बजवाइएगा प्लीज। ये मजाक की बात नहीं है, ये अपमान है कथा का। आप बच्चे को तो बाहर ले जाइए तो मृदंग को बाहर लेके जाइए। देखिए फ्लोर टूट जाता है, क्या बात कर रहा था मैं। हाँ तो बहुत व्यस्त हैं, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं तो पहले बुकिंग करते हैं कि घर है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन व्यक्ति प्राय इस प्रकार से अगर घर परिवार में, केवल घर परिवार में व्यस्त रहता है तो न वेदागत मंतकम, ये केवल अजामिल के लिए नहीं है। महात्मा अजामिल का तो उद्धार हो गया, और बाकी जो लोग इस तरह से फंसे हुए हैं इन क्रियाओं में, उनको याद रखना चाहिए कि कितना भी हम बहाना कर लें लेकिन मृत्यु हमारे बहाने को सुनने वाली नहीं है। इस संबंध में कभी कभी लोग, आपने देखा होगा ट्रेन में बोलते भी हैं, टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए, और वो टाइम पास मूंगफली भी बांटता है, और लोग सोचते हैं कि समय व्यतीत नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि समय उनके लिए रुक गया है, लेकिन समय सबके लिए बराबर रूप से चल रहा है। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु स्वयं खोला बेचा सीधर को कहते हैं, तुम कृष्ण की पूजा करते हो लेकिन तुम तो बहुत गरीब हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो खोला बेचा सीधर कहते हैं, समय हे भगवान, समय तो एक बराबर से सबको सबके लिए चल रहा है, सबकी आयु को काट रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नविदा गतमंत कम, अर्थात किस प्रकार से काल सबकी आयु को क्षीण कर रहा है, लोग देख नहीं पाते। कारण क्या है? असद असद हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं में बहुत आसक्त हैं। असद ग्राहान भगवद गीता में आता है, असद को ग्राह एक मगरमच्छ की तरह पकड़े हैं। जो वस्तुएं भौतिक रूप से भौतिक हैं, जो क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, उनको कस के पकड़ा है जैसे ग्रह पकड़ता है अपने शिकार को, लेकिन वह छूट जाएंगी। और भगवान में और भगवान के शाश्वत सेवा में वो ध्यान नहीं रखते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु रहते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और बात बोलने चाहूंगा कि भौतिक क्रियाओं का यह स्वभाव ही है कि हमारे स्वरूप को भुला देती हैं। इस संबंध एक बहुत अच्छा उदाहरण भक्त लोग देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे हम सो रहे होते हैं तो अपने इस भौतिक जीवन का याद नहीं रहती है, ऐसे ही जब हम जग रहे होते हैं तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की कोई याद नहीं रहती। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब हम सो रहे होते हैं तो इस जगत के परिवार के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं, उसी प्रकार से तथाकथित रूप से जागृत अवस्था में भी हम भूले हुए हैं कि कृष्ण से हमारा क्या संबंध है। वहां पे बहुत सारी लीला चल रही होंगी, इस समय कृष्ण क्या कर रहे होंगे, और हम यहाँ आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं। क्या है? भुंजाना प्रपिबन खादन, हम भी इसी तरह से खाने पीने में फंसे हुए हैं, कोई विरह का अनुभव नहीं कर रहे थे कि हम उस लीला में को मिस कर रहे हैं, अब लीला क्या चल रही होगी, बिल्कुल टेंशन मुक्त है। इवन भक्त होते हुए भी खाने पीने में मस्त है कि नहीं? और जो भक्त नहीं है उनके बारे में क्या कहा जाए। तो खैर हम तात्पर्य पे जाते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप भगवान की कोई भी गुण समझ भी सके लेकिन भगवान की जो अहेतु की दया है वो जो जीवों पे है उसको समझ नहीं सकते। यद्यपि यह व्यक्ति नारायण को पूरी तरह भूल चुका था किंतु अपने बच्चे को यह कहकर पुकारता रहता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर यह दूध पी लो, इसलिए वह किसी न किसी रूप में नारायण के नाम से जुड़ा रहा था। यह अज्ञात सुकृति कहलाती है। यद्यपि वह पुकारता अपने पुत्र को था किंतु अनजाने में वह नारायण का नाम लेता था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतने शक्तिशाली है कि उसका वह पुकारना कीर्तन करना माना जा रहा था। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दूसरे अध्याय में जब विष्णुदूत बोलते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है यद व्याज हारा, जब उसने पहली बार बोला था नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो उसी समय उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। उसी प्रकार से जब आपने हरे कृष्ण में पहली बार हरे बोला था उसी समय अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। समझ में नहीं आता है। जैसे इस रूम में अनंत काल से अगर अंधेरा हो तो जैसे ही बल्ब जलाया जाएगा तो तुरंत वो अंधेरा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये नहीं कह सकता अंधेरा कि मैं तो करोड़ों साल से हूं तो यहां पे और 5 लाख साल रहूंगा। हमें शास्त्र की बात पे श्रद्धा रखनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, वो कह रहे हैं उसमें बताते हैं कि उसके बाद जो भी उसने नारायण बोला वह उसकी भक्ति को बढ़ा रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आचार्य बताते हैं। उसी प्रकार से जब ने पहली बार हरे बोला था सभी सब पाप समाप्त हो गए, और बाकी जो हरे कृष्ण कर रहे हैं उससे उसका उद्देश्य पाप नष्ट करना नहीं है, उसका उद्देश्य है भगवत प्रीति को प्राप्त करना। और वही प्रीति भगवत धाम जाने की योग्यता है। उसकी चर्चा अभी हम क्लास के अंत में करने का प्रयास करेंगे। तब देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने बेटे को पुकारने की भावना से भी कोई अगर कीर्तन करता है और उसका मन तो निश्चित रूप से नारायण में नहीं था, तब भी भगवान उसको भक्ति मानते हैं। भाव यद्यपि वह भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं है, तो अगर सोचिए कोई भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से हरि नाम करे, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, भगवान प्रसन्न होंगे इस तरीके से हरि नाम करे, बिना सोए हरि नाम करे, बिना व्हाट्सएप चेक किए हरि नाम करे, ये बहुत बड़ी तपस्या है कलयुग में, तो कितना लाभ होगा, कितना भगवान का अनुग्रह होगा, हम समझ नहीं सकते उसको। इस संबंध में गोप कुमार जब विष्णु लोक पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु कहते, तुमने अगर एक बार भी मेरा नाम ले लिया होता तो मैं तुम्हें लेके आ जाता। आप कहेंगे आपको कैसे पता? मैं उनके वहीं पे खड़ा था। नहीं, वहां पे खड़ा नहीं था। सनातन गोस्वामी जी बताते हैं इस बात को, टीका में कहते हैं कि नामाभास भी हो जाता तो मैं तुमको लेके आ जाता अपने पास। इतना भगवान का आग्रह है, इतना भगवान का प्रेम है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि जगत में किसी की जेड ग्रेड की सिक्योरिटी होगी तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा ना, समझ रहे? जेड ग्रेड ब्लैक कैट कमांडो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अब जेड ग्रेड की सिक्योरिटी ज्यादा शक्तिशाली है कि विष्णुदूत सिक्योरिटी शक्तिशाली? और आप देख सकते हैं अजामिल जैसा व्यक्ति, जैसा उसका रिकॉर्ड रहा होगा वैसी क्राइम शीट यहां पर उपस्थित किसी भक्त की नहीं होगी, ठीक है? और उस व्यक्ति को बचाने के लिए भगवान ने वैकुंठ से दूत भेजे थे। तो ये है इतने अद्भुत नाम की महिमा कि भगवान कोई दोष नहीं देखते हैं। व्यक्ति बोला, ये तो न्याय नहीं कर रहे हैं भगवान। तो हमने कहा, न्याय करने के लिए यमराज को रखा है, कृपा करने के लिए वो स्वयं है। तो इसलिए मुश्किल बात यह है कि हम भक्त लोग भी स्वयं, एटलीस्ट मैं अपनी बात करता हूं, जो लोग नामोच्चारण कर रहे हैं उनको सम्मान नहीं दे पाते। एक नामोच्चारण करने वाले की इतनी महिमा है, और जो रोज 16 माला कर रहे हैं, चाहे उनकी थोड़ी नींद भी आ जाती हो, चाहे थोड़ी उनकी नाक भी बहती हो, या कुछ और कारण से कोई भौतिक दोष हो, फिर भी हम सम्मान देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। और तो सम्मान देने में कोई खर्चा नहीं होता है। खैर, हम बहुत नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, लेकिन इस पे विचार करना चाहिए कि जब अजामिल पे की सिक्योरिटी विष्णुदूतों के द्वारा हो रही है, तो जो नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। अगला श्लोक देखेंगे। तो यानी वो समझ नहीं पा रहा था कि दो चीज नहीं समझ पा रहा था, एक समझ नहीं पा रहा था कि उसका अंत पास में आ रहा है, और ये भी नहीं समझ पा रहा था कि वह भक्ति में प्रगति कर रहा है। इसलिए भक्तों को शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम समझ नहीं पाते नाम की महिमा केवल उच्चारण करने मात्र से। कितना बड़ा लाभ है और उसके द्वारा प्रेरणा मिलती है नाम करने की, ये हमें जीवन में सीखना चाहिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ के। नेक्स्ट श्लोक मेरे पीछे बोलिएगा। स एवं वर्तमानो ज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायण वये। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 2.1.6 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृपया मेरे पीछे बोलिए, एतावान् सांख्य योगाभ्याम् स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे पदार्थ तथा आत्म के पूर्ण ज्ञान अर्थात सांख्य। सांख्य में व्यक्ति ये अभ्यास करता है कि क्या आत्मा है और क्या पदार्थ है, नेति नेति, ये पदार्थ है ये आत्मा नहीं है, इस प्रकार से वह प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। योग शक्ति अर्थात योगाभ्याम अर्थात अष्टांग योग की उपलब्धि या अपने वृत्ति परक कर्तव्य की संपन्नता के द्वारा प्राप्त अर्थात वर्णाश्रम धर्म का बढ़िया से पालन करना, स्वधर्म परिनिष्ठया, सो धर्म का अर्थ है वर्णाश्रम के नियमों का बहुत निष्ठापूर्वक पालन किया गया हो, तो उससे क्या होगा, मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करना है। जन्म लाभ अगर व्यक्ति का है, परम लाभ है उस जीव का, इंसान का, अगर उसे अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। अब इसका श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दो अर्थ करते हैं, एक ये अर्थ तो है ही और इसके अलावा एक और अर्थ करते हैं जिसे प्रभुपाद जी ने भी अपनी कमेंट्री में जोड़ा है, उस पर जरा विचार करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला वो जो इस बोलते हैं कि यदि ज्ञान कर्म और अन्य साधन, जैसे आप यहां देख रहे हैं सांख्य योग अश्वधर्म, इस प्रकार के साधन करते हुए अगर व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करके भक्त बन जाता है तो फिर वह इन साधनों को नहीं करता। वो अंते को समझा रहे हैं, अंते का अर्थ है कि इन सबको करते करते जब इनका अंत हो जाए, इन साधनों का अंत करते मतलब करते करते अभ्यास करते करते अंत हो जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और भक्ति में लग जाए, उसके बाद इन साधनों का अनुशीलन वो नहीं करता है। दूसरा कि ज्ञानियों योगियों और कर्मियों के लिए ऐसा जन्म श्रेष्ठ है। कैसा जन्म? जब उन्हें भक्तों का संग प्राप्त होकर के भक्त बनने का मौका मिले, यानी कि ऐसे लोगों के लिए, सांख्यों के लिए, सांख्याइट के लिए, योगियों के लिए, स्वधर्म में निष्ठित लोगों के लिए, तब जन्म सफल माना जाएगा, उनके जन्म का लाभ को सफल माना जाएगा जब उन्हें भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होकर के भक्ति करने का मौका मिले। जैसे मुचुकुंद महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण को कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है तब उसे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, बिना भगवान की भक्ति किए व्यक्ति भगवान की प्रीति को जागृत नहीं कर सकता। इन साधनों के द्वारा भगवत प्रीति नहीं होती है, लेकिन ऐसा करते करते कदाचित उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तब वह इन सारे साधनों को दोबारा नहीं करते, उनका अंत कर देते हैं और भगवान की भक्ति ही करते हैं, तब उनका जीवन सफल माना जाएगा। और वह जन्म कैसा होगा? वह जन्म सफल है यदि ज्ञान योग और कर्म के अंत के साथ शुद्ध भक्ति अर्थात भगवान नारायण की स्मृति प्रकट हो जाए। जब वह शुद्ध भक्ति करते हैं भगवत भक्तों के संग से तब वह भगवान की स्मृति कर पाते हैं। प्रभुपाद जी भी उदाहरण को देते हैं। अब आपसे छोटा सा प्रश्न किया जाएगा, प्रभुपाद जी भी यही बात बोलते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं चतुर कुमारों का। चतुर कुमार कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मायावादी नहीं कह सकते, ब्रह्मवादी थे, ज्ञानी थे, और किसके संग से वो भक्त बने? भगवान के चरणों की तुलसी, लेकिन उससे पहले उनके डैडी का संग था। उनके डैडी ने बताया था, ब्रह्मा जी ने बताया था कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, फिर वो वैकुंठ में जाते हैं और उसके बाद वह भगवान के चरण कमलों की तुलसी का स्मरण गंध लेकर के भक्त बन जाते हैं। नवयोगेंद्र कैसे भक्त बने थे मुझे पता नहीं, बट मैं समझता हूँ ऋषभ देव की वजह से बने होंगे। ऋषभ देव इनके पिता थे और भगवान थे। हाँ, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? नवयोगेंद्र योगी के मैं समझ सकता हूं, और इसके बारे में ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग हेल्प कर सकते मेरी। और प्राचीन बरही कौन सी कैटेगरी में थे? कर्म में, वेरी नाइस। और मैं किसका संग प्राप्त हुआ? नारद मुनि का। और हम सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में क्या सुनते हैं? वो कौन सी कैटेगरी में थे? हाँ, निर्विशेषवादी थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। किसका संग प्राप्त हुआ था? श्लोक सुना था बाद में व्यासदेव जी का। तो हम देख रहे हैं कि उन सभी का जन्म लाभ हुआ, शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए और उसके बाद भगवान के शुद्ध उनका जन्म लाभ हो गया। अच्छा, एक और वो बात बोलते हैं, अंत शब्द यह इंगित करता है कि यदि वह भक्ति में आने के बाद भी भक्ति छोड़ दे तो भी उन साधनों को नहीं करता वापस। बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर टीका दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लीजिए उसने भक्तों का संग किया, भक्ति में आ गया, अब उसको इतना टेस्ट मिल जाएगा कि उस भक्ति से गिर भी गया, मान लीजिए भक्ति पूरी नहीं कर पाया, तो भी अब वो ज्ञान कर्म और नहीं करने वाला। आप देख लीजिए बहुत सारे भक्त हैं जो कदाचित भक्ति छोड़ भी देते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अब बैठ करके वो निर्विशेषवाद का अभ्यास करते हैं। क्या आप किसी भक्त को जानते हैं? हो सकता है वो भौतिकतावाद में चले जाएं, हो सकता है ऐसा, लेकिन साधन के मामले में उनको कन्विंस हो गए हैं कि भक्ति ही साधन है, उसके द्वारा ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई उनको बोले कि देवताओं की उपासना करके भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, वो कन्विंस नहीं होगा अगर अच्छे से भक्ति कर लिया है तो यहाँ पे। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अंत में भगवान की स्मृति होती है तो व्यक्ति का जन्म लाभ होता है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2.3.11 का श्लोक कोट करते हैं और कहते हैं, एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत अचलो भावो यद भागवत संगतः, कि देवताओं की पूजा करने वालों के श्रेय की प्राप्ति तभी होती है जब भक्तों के संग से उनमें भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। वो अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि जितने भी साधन कोई व्यक्ति कर रहा है अगर उसमें भक्ति का सम्मिश्रण साथ नहीं होता तो फिर उसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, कुछ भी फायदा नहीं होता। और वो कह रहे हैं भगवती अचलो भावो, भगवान में अचल भाव, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। कैसे होती है? भागवत संगतः, भक्तों के संग से। तो इस प्रकार से वो इसको हम श्लोक को समझा, एक अर्थ ये है कि अंत के समय भगवान नारायण की स्मृति होनी चाहिए। अभी एक प्रश्न उठाएगा, उसको मैं उठाऊंगा लास्ट के पार्ट में। और दूसरा अर्थ ये है कि जीवन का लाभ तब है जब हमें भक्तों का संग प्राप्त हो और हम अपने उल्टे सीधे साधन छोड़ करके भक्ति के साधन को हम स्वीकार करें। ठीक है, जैसे भी हो, अजामिल ने जाने अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया, अंते नारायण स्मृति। अतः नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वह परम पूर्ण बन गया, अर्थात परम शुद्ध बन गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल जो कि ब्राह्मण पुत्र था अपनी युवावस्था में नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है, कट्टर ब्राह्मण के घर में नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था किंतु नारायण के पवित्र नाम पर अपने मन को एकाग्र करने से वह उन नारायण का स्मरण करता जिनकी पूजा उसने युवावस्था में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक की थी। इस पे बहुत से लोग कहेंगे नहीं, उसने नारायण का स्मरण नहीं किया, और कुछ लोग कहेंगे नहीं, नारायण का स्मरण किया था। अगर मैं एक शब्द बोलता हूं कृष्ण बलराम, तो किसका स्मरण आता है? एकदम स्पष्ट है कि नहीं? जिस व्यक्ति ने कृष्ण बलराम का दर्शन नहीं किया है, आप अमेरिका में जाके चलाइए कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, तो उन्हें कृष्ण बलराम के विग्रह का स्मरण नहीं आएगा। लेकिन जो भक्त रोज मंगल आरती जा रहे हैं या भगवान का दर्शन करते हैं तो जब वो सुनेंगे कृष्ण बलराम तुरंत स्मरण आएगा। ये आप लिंक समझ रहे हैं? भले ही हम बोले अरे वो कृष्ण बलराम के ऑल्टर पे जो कुछ डेकोरेशन उसे हटा दीजिए, लेकिन जब बोल रहे हैं कृष्ण बलराम का ऑल्टर, लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम की स्मृति आती और उन्हीं रूप की स्मृति आती है जो वहां पे हैं, जिनको हम रोज देखते हैं। क्या ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है? कोई विरोध तो नहीं? इसका अनुभव कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, जब बचपन से ही नारायण की मूर्ति पर वो ध्यान कर रहा था, सेवा कर रहा था, तो बाद में भले ही वो बीच में भूल गया हो, लेकिन भगवान अपने बच्चे का नाम लेते हुए भी उसकी स्मृति, नारायण की स्मृति आती थी। ये बहुत बीबी गोविंद महाराज संबंध में समझा रहे थे कि इस जगत में भी अगर आप किसी के गुणों का वर्णन करें, उसका नाम न लें, तो ठीक ठीक भावना धारणा नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप नाम ले लेते हैं तुरंत उसके रूप, उसका गुण, उसकी लीला, अगर लीला कह लीजिए या से कार्य, तुरंत याद आ जाते। अगर किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम बोलते हैं उसका नाम भी मत लो। तो नाम भी ना मत लो का क्या मतलब है? नाम लेने से ही उसका रूप भी याद आ जाता है, उसके गुण भी याद आ जाते हैं, उसकी लीला भी याद आ जाती है कि क्या लीला की थी हमारे साथ क्या बोला था, सब कुछ याद आ जाता है। तो ये भगवान के नाम में उनके सारे रूप गुण लीला हैं, और साथ साथ उसका पहले का अभ्यास था। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि हो सके तो बचपन से ही, प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज सभी लोग बोलते हैं बचपन से ही व्यक्ति को भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, इसका बहुत लाभ होता है। कदाचित वह गिर भी जाएगा तो अभ्यास उसके आगे काम आएगा। तो ये आप समझ रहे हैं कि वह नारायण बोलते बोलते भी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, अनकॉन्शियसली अचेतन अवस्था में भी वह भगवान का स्मरण करता था। और ये बात तो सत्य है ही कि कैसे भी नामोच्चारण किया जाए पाप नष्ट होता है, भक्ति बढ़ती है। मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि जैसे हम लोग टांगों से परिक्रमा करते हैं, मन से परिक्रमा करें और भी अच्छी बात है, मतलब मन भी लगना चाहिए, लेकिन परिक्रमा टांगों से की जाती है, ऐसे ही जप जीभ से किया जाता है। तो जीभ की भक्ति का एक अलग प्रभाव होता है, अलग अकाउंट होता है। हम उसे सुन सकें तो और अच्छी बात है, लेकिन जीभ से बोलने का अलग प्रभाव होता है, वो अलग भक्ति है अपने आप में। हमने इसे पिछली बार की क्लास में भी बताया था कि किस प्रकार से जीभ से स्पर्श करने मात्र से गंगा जी का स्नान, वेदाध्ययन, सब कुछ सारे पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति की श्रद्धा भगवान में अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सुविधा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जीभ से उच्चारण करने मात्र से लाभ है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग रडार जप करें या फिर व्हाट्सएप चेक करते हुए जप करें, ये उचित नहीं, ये भगवान का तिरस्कार है। लेकिन जप कर रहा है और मन उधर भाग रहा है और फिर हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है तो वो भी भक्ति बढ़ती है, लेकिन इसमें भगवान का तिरस्कार नहीं है। इस संदर्भ में श्रील श्रीधर स्वामी ने अपने निर्णय को इस प्रकार व्यक्त किया है, एतच्च तदुपलाननादि श्री नारायण नामोच्चारण महात्म्येन तद भक्ति रेवा भूद इति सिद्धांतोपयोगित्वे नापि द्रष्टव्यम्। भक्ति सिद्धांत के अनुसार यह विश्लेषण किया जा सकता है कि चूंकि अजामिल अपने पुत्र नारायण के नाम का निरंतर उच्चारण करता था, इसलिए वह भक्ति ना जानते हुए भी भक्ति के पद को प्राप्त हुआ। देखिए यही बात मैं बोल रहा था ना अभी, श्री श्रीधर स्वामी इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पे कि ना जानते हुए भी अगर कोई भगवान का नाम उच्चारण मात्र कर रहा है, बोल रहा है, तो वह भक्ति में प्रगति कर रहा है और वह यमराज के जोन से बाहर चला जाता है और वह कैसे रूप में आगे परिणित होता है, अकस्मात उसको भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ने लगती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक उड़ीसा में एक नदी के उस तरफ थे, उधर से एक मुसलमान व्यक्ति था और मुसलमान व्यक्ति वो राजा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आया, तो जैसे ही उसने हरे कृष्णा बोला उसके बाद बोलता है मैं बहुत पापी हूँ, कृपया मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ बोलते हैं कि जो व्यक्ति हरे कृष्णा करता है उसकी सेवा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, यही बोलते होंगे, उसकी सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मुझे मैं कुछ जानबूझ के गलत बोलता हूँ ताकि ये मालूम चल जाए कि सो तो नहीं रहा है। जो व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है तो उसका स्वाभाविक रूप से उसकी सेवा करने की इच्छा होगी, उसके हृदय में रात में सोते समय ये साक्षात्कार होगा, अनुभव होगा कि मैंने आज कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो पूरा दिन कृष्ण की सेवा में लग रहे। ये है वास्तविक रूप से भक्ति में प्रगति का लक्षण। और अगर हरे कृष्णा कर रहे हैं और सेवा आई तो कहें अरे ये क्यों आ गई, और भगवान मान लीजिए वाकई बोले तो कहे दो घंटा तुम यही तो मांग रहे थे, है ना, जैसे मान लीजिए आप प्रसादम के समय बैठे अरे भाई पनीर लाओ पनीर लाओ पनीर लाओ, जब पनीर सर्व कर दिया गया तो कहे अरे ये क्यों आ गया, तो सर्वर क्या बोलेगा, आपने जो आप ही तो मांग रहे थे पनीर प्रसादम। तो इसलिए आपस में संबंध है। प्रभुपाद जी नेटर ऑफ डिवोशन बोलते हैं कि अगर हम भगवान की कुछ सेवा करते हैं, इस सेवा भावना को जागृत करते हैं, उसके अभ्यास से हमें नाम में भी रुचि प्राप्त होगी। तो हरे कृष्ण मंत्र सेवा है अपने आप में, बिल्कुल सही बात है, और उसके साथ साथ अगर हम कुछ सेवा करते हैं तो हम भगवान को दिखाते हैं कि हम केवल लिप सर्विस नहीं कर रहे थे। लिप सर्विस समझते हैं, सेवा चाहिए सेवा चाहिए सेवा चाहिए, जब सेवा नहीं ये नहीं चाहिए नहीं ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर यहां बात आ रही है कि भक्ति पद को प्राप्त हुआ, भक्ति के पद को ऊपर उठ रहा है, उसकी श्रद्धा हुई, और आप देख सकते हैं कि जब विष्णु दूतों के द्वारा वो सुनेगा तो कुछ चैलेंज नहीं करेगा, एकदम दृढ़ श्रद्धा आ जाती है, वो जो बोले उस पर पूरा श्रद्धा आ गई। और वह हरिद्वार जाकर के उसके बाद वो घर नहीं गया, ऐसा नहीं कि अब उसकी तथाकथित पत्नी के लिए वो फिक्स डिपॉजिट करेगा कि उसका क्या होगा, कुछ नहीं, उसने छोड़ करके तुरंत हरिद्वार जाकर के भगवान का भजन किया। तो यानी कि नाम उच्चारण करने मात्र से हमारी भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति सेवा की भावना बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह श्रील वीर राघव आचार्य यह मत व्यक्त करते हैं, एवं वर्तमान स द्विजः मृत्यु काले उपस्थिते सत्यज्ञो नारायणाख्ये पुत्र एव मतिम चकार मतिम आसक्ताम अकरोत इत्यर्थः। यद्यपि मृत्यु के समय वह अपने पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहा था, फिर भी वह अपने मन को नारायण के पवित्र नाम पर एकाग्र किए हुआ था। और ये बहुत अद्भुत बात है क्योंकि उसकी प्रीति बेटे में थी, लेकिन नाम का स्वभाव ऐसा होता है कि जब हम कुछ बोला जाता है तो हमारा मन आकृष्ट हो ही जाता है। ये शब्द का शक्ति होती है कि वह मन को पकड़ लेता है, ये एक अद्भुत शक्ति है शब्द में, इसलिए नारायण का अभ्यास, नारायण शब्द का अभ्यास उसके चित्त में जा रहा था। एक बात अच्छी थी कि उसका चित्त इस समय वेश्या में नहीं लगा हुआ था, और बच्चे का स्मरण करना, बच्चे से प्रेम करना, ये कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। उसका चित्त अपने बच्चे में लगा था और अनजाने में भगवान का नारायण चालन कर रहा था। और श्री विजयदश तीर्थ ने ऐसा ही मत व्यक्त किया है, ये इंटरेस्टिंग है। इस पर हम बहुत रिसर्च कर रहे थे कि प्रभुपाद जी इसको बहुत अनुवाद नहीं किए हैं, तब दिक्कत होती कि अगर प्रभुपाद जी अनुवाद ना करें तो कितने दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं मृत्यु काले अर्थात मृत्यु काल के समय में देह वियोग लक्षण काले, अर्थात जब देह के छूटने का लक्षण उपस्थित हो गया, मृत्यु हो सर्व दोष पाप हरस्य हरेर अनुग्रहात काले, मृत्यु के समय जो दोष और पाप होते हैं उन सब को अपने अनुग्रह से हरण करने वाले हरि की कृपा से दत्त ज्ञान लक्षणे उपस्थिते हृदि प्रकाशते, उसके अंदर ज्ञान के लक्षण प्रकाशित हो गए, उसके हृदय में ज्ञान के लक्षण प्रकाशित हो गए। यद्यपि तनये पूर्ण ज्ञाने बाले पंच वर्ष कल्पे प्रादेश मात्रण मात्रे नारायणाफहे, अर्थात उसका ज्ञान, देखिए मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो कोई संस्कृत का स्कॉलर है तो मैं ठीक कर सकता है, उसकी कोई मैं आपत्ति नहीं है, लेकिन जितना हमारी समझावट कल तक हुई भक्तों से चर्चा करके उतना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि उसका ज्ञान पूरी तरह से अपने 5 साल के बच्चे, इसमें लिखा हुआ है पंच वर्ष कल्प प्रादेश मात्रे नारायण आह्वये, जिसका नाम नारायण था उसी में उसका चित्र लगा हुआ था। लेकिन भगवान की कृपा से, यहां पे लिखा है हरेर अनुग्रहात, भगवान की कृपा से मूर्ति विशेष मतिम स्मरण समर्थम, भगवान की विशेष मूर्ति नारायण मूर्ति को चित्तम चकारा, अपने चित्त में वह स्मरण कर पाया। तो आप कहेंगे अरे अब उसका चित्त तो अपने बच्चे में लगा हुआ था तो भगवान में कैसे लगा, शब्द है हरेर अनुग्रहात, भगवान की कृपा से। और अनुग्रह क्यों हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति नाम उच्चारण करता है उस पे उसकी उसके प्रति भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। ये आगे बातें आएंगी एतद विषय मति ही करके भगवान विष्णु के संबंध में विष्णुदूत बोलते हैं। ये बहुत प्रेरणादायक बात है क्योंकि इस जगत में भी ऐसा नहीं है कि हमारी चित्त केवल भगवान में लगा हुआ है। और कई बार हर बार ये प्रश्न आता है कि हम हरे कृष्ण कर रहे हैं और हमारा मन कहीं और जा रहा है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मन वहां जा रहा है जहां पे हमारी आसक्ति है। लेकिन जब अजामिल पे अनुग्रह किया भगवान हरि ने तो मेरे पे भी करेंगे मृत्यु के समय में, इस विश्वास के संग हमें हरि का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। उनके अनुग्रह से हम उनका स्मरण कर सकते हैं और उनका अनुग्रह केवल भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये श्लोक की इस टीका से शिला विजयद्वज तीर्थ की बहुत प्रेरणा मिलती है कि भगवान के अनुग्रह से भगवान सारा पाप हर करके हमारी मति हमारे चित्त में स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। जैसे इस संबंध में मैंने एक भक्त से सुना प्रभुपाद जी की उक्ति, वो कह रहे थे प्रभुपाद जी से पूछा गया कि भाई एक बार भी जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है वह कैसे मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वह मर रहा होता है तो मरते समय, अब हमें तो पिछले अपनी मृत्यु का याद नहीं है लेकिन ऐसा बोलते हैं, मरते समय पूरी जीवन की जो रील है वो चलती रहती है, मैंने ये किया मैंने वो किया मैंने ये किया मैंने ये किया। और ऐसा उनका कथन, वो भक्त बोल रहे थे कि जैसे ही जो देखेगा कि मैं जगन्नाथ जी के सामने खड़ा हूं और जगन्नाथ जी अपने रथ पे हैं तो भगवान उसको फ्रीज कर देंगे। फ्रीज समझते ना, जैसे कभी कभी पहले जमाने में रील वाले वीडियो आते थे तो अटक जाते थे, तो ऐसे ही वो अटक जाएगा और फिर भगवान की स्मृति करके भगवत धाम चला जाएगा। तो ये सब हरि के अनुग्रह से बात है, जो व्यक्ति जीवन भर भक्ति किया। और इसको आप अतिशोक्ति मत मानिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम में जब अघासुर का उद्धार हो जाता है तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि अघासुर का उद्धार हो गया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने एक बार भी जीवन में जबरदस्ती अपने मन में भगवान के विग्रह को लेके आया, रूप को लेके आया है, उसको भगवान सारूप्य देते हैं। तो वो भगवान अगर साक्षात उसके शरीर में प्रवेश कर जाए और उसका उद्धार हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। इसीलिए मैं कई इस श्लोक को कई बार बोलता हूं और कई बार बोलता हूं इस बात को कि मंगल आरती आकर के भगवान का दर्शन करना बहुत जरूरी है। जब एक बार लाने से भगवान सारूप्य देंगे तो रोज कोई स्मरण करे भगवान के रूप गुण का तो फिर कहना ही क्या। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं कि सॉरी प्रभुपाद जी की बात रह गई। वस्तुतः अजामिल ने मृत्यु के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से नारायण का स्मरण किया, अंते नारायण स्मृति। तब आप एक प्रश्न उठा सकते हैं कि अंत में नारायण स्मृति होती है, हो गई अगर उसकी, तो वह भगवत धाम क्यों नहीं गया? Isn't it? भाई एक आचार्य कह रहे हैं कि नाम उच्चारण किया पाप कट गए इसलिए वो नहीं ले जा पाए, और यहां पे श्रील विजय कह रहे हैं कि नहीं, उसने नारायण की मूर्ति का, मूर्ति विशेष विशेष मूर्ति का स्मरण भी किया, तो क्यों नहीं गया? तो श्रील जीव गोस्वामी 6.2.22 में क्रम संदर्भ में टीका पे अपनी टीका लिखते हुए कहते हैं, क्योंकि वह केवल नाम कर रहा था। केवल नाम का अर्थ है जिसमें भगवान के प्रति स्नेह और प्रेम नहीं होता। हरे कृष्ण रे 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 राम 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 रे राम राम रे, प्रेम जो है घड़ी से होता है या किसी और वस्तु से हो सकता है। तो ऐसा नाम जो है व्यक्ति के पतन को बचा देगा, वो नरक नहीं लेके जा सकते ऐसे व्यक्ति को। कभी कभी लोग बोलते हैं कि 16 माला ठीक से नहीं करोगे, कभी कभी हमने सुना है, तो नरक चले जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। चाहे कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए, सो सो के किया जाए, या खाना खा के, खाना क्या कहते हैं, खादन भुंजान प्रपिबन खादन भालक यंत्रतः स्नेह यंत्रतः, कैसे भी किया जाए, ए हरे कृष्णा, वो हरे कृष्ण ढाबे पे जाओ या हरि ओम ढाबे पे जाओ, तो हरि ओम से सब पाप नष्ट हो जाता है, तो इसलिए नरक नहीं जाएंगे, सत्य बात है। लेकिन वो कहते हैं स्नेह संयुक्त नाम से हम भगवान के धाम जाने के योग बनते। स्नेह संयुक्त का अर्थ क्या है? स्नेह समझते हैं, स्नेह मतलब प्रेम प्रीति, संयुक्त मतलब उससे जुड़ा हुआ। तो इसलिए भक्त लोग पाप काटने के लिए हरि नाम नहीं करते हैं, भगवान के प्रति स्नेह जागृत करने के लिए, प्रेम जागृत करने के लिए हरि नाम करते हैं। इसीलिए नियम बताए जाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी, एक तरफ बोलते हैं कैसे भी नाम करो फायदा होगा, दूसरी तरफ बोलते हैं व्हाट्सएप मत चेक करो, कितना अच्छा लगता है, कितना इजी रहता है जब करने व्हाट्सएप, इधर व्हाट्सएप चेक करो, कितनी न्यूज आती रहती है, उसे हम हरे कृष्ण कर सकते हैं। क्यों ये सब नियम बता रहे हैं? क्योंकि केवल नरक ना जाना ये सफलता नहीं है। प्रभु जी आप जेल गए हैं क्या? हाँ जेल नहीं, नहीं प्रभु जी नहीं क्या, अरे बड़े सफल व्यक्ति हैं आप। अगर कोई आपको पूछे कि आपका करियर में कभी आप जेल गए हैं, तो नहीं मैं जेल नहीं गया हूं, तो बहुत सफल व्यक्ति हैं आप। नहीं, ये कोई सफलता का मानदंड नहीं कि जेल नहीं गए। वैसे कलयुग में कोई अगर नरक ना जाए ये भी बहुत बड़ा सफलता है, लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु महावदन अवतार स्वयं बोल रहे हैं, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हुए। प्रयास किए बिना, आग्रह मतलब जिद पे लगे रहे बिना भगवत प्रेम नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि हम टांग फैलाकर जब करते रहेंगे हरे कृष्ण करते रहेंगे, ऐसा करे जब करते रहेंगे तो प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। क्या दुरु महाराज सो करके जब कर रहे थे या मनु महाराज सो करके जब कर रहे थे? कोई सो सो के जब करेगा सोचे कि भगवत प्रीति हो जाएगी तो नहीं होगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र में उदाहरण है, कोई दिखा दीजिए कोई व्यक्ति सोता हुआ भगवत प्राप्ति किया, कहेंगे मुचुकुंद महाराज। हाँ ठीक है, मुचुकुंद महाराज सो रहे थे, भगवत प्राप्ति हुई थी, लेकिन जब वो भजन कर रहे थे तब सो नहीं रहे थे। तो जो भजन करके समय सोएगा उसके थोड़ा सा समय लगेगा, वो केवल नाम कर रहा है, लेकिन हमें स्नेह संयुक्त नाम करना है। तो सारा विरोधाभास स्पष्ट हो जाता है। मैं थोड़ी बात, वैसे मेरी क्लास समाप्त हो चुकी है, कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं भगवान के नाम में स्नेह कैसे उत्पन्न करें उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं। एक प्रश्न हम ले सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास 5 मिनट है। ओके पहले प्रभु जी कर रहे थे, यस बोलिए, ऐसे बोल दीजिए, बोलूँगा यस। जीवात्मा दुख क्यों भोगता है? क्योंकि भगवान से विद्रोह किया है। दिस इज गुड क्वेश्चन। हाँ पढ़िए पढ़िए बोलिए, फिर दुख क्यों आता है? देखिए, एक नाम करने मात्र से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका प्रमाण मैंने पिछली बार दिया था, 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं विदुर विगतः। लेकिन अपने भक्त को शुद्ध करने के लिए भगवान उसके जीवन में दुख सुख देते हैं। जैसे आपकी माता जी ने क्या पोलियो का टीका लगवाया था आपको कभी? यस नो, आपको याद नहीं है, लेकिन माताएं बताइए बच्चों को आप लोग टीका लगवाती हैं पोलियो के? अब शायद अब ड्रॉप पड़ती हैं, लेकिन पहले टीके लगते थे। तो टीका लगने में कष्ट होता है, लेकिन आगे बहुत बड़ा कष्ट से बच्चा बच जाता है। तो भक्त को अपने भक्त को हृदय में की सफाई कैसे करनी है भगवान जानते हैं, तो इसलिए कुछ कष्ट देते हैं ताकि आगे बहुत बड़े कष्ट से वो बच जाए। भक्त कर्मों के कर्म बंधन के प्रभाव में नहीं होते,
एकदम स्पष्ट रूप से। और भक्त का भी यही भाव होता है कि चाहे मुझे नरक भी जाना पड़े अपने अपराधों के कारण, मैं कृष्ण की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वह कृष्ण की कृपा से ही आ रहा है, और मैं समझ सकूं या ना समझ सकूं यह मेरे लाभ के लिए है। जैसे बच्चा, ऐसा नहीं है कि अब देखेगा कि माँ इंजेक्शन लगवा रही है, उसे दर्द हो रहा है, तो अब वो सोच भी सकता है अरे माँ कितनी निर्दयी है, देख नहीं रही मुझे कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि मेरी माँ है। तो इस प्रकार से सुख दुख जो भी भक्त के जीवन में आते हैं वह है भक्ति करने से, और कुछ अपराध करने की वजह से आता है। जो भक्ति में सुख आ रहा है तो, या जीवन में कुछ सुख आ रहा है वह भक्ति करने से आता है, और जो दुख आ रहा है वह भक्ति में अपराध की वजह से आता है। लेकिन वो जो कुछ भी है वो मार पीट के भगवान ठीक करेंगे, और ठीक करेंगे, छोड़ नहीं सकते आपको। जिसने हरे कृष्णा में आ गया वो भागेगा तो फिर उसका नुकसान होगा, क्योंकि भगवान फिर पिटाई करेंगे, होता है ना। माता जब माता जी लोग भी, स्पेशली हम सब ने मार खाई है, तो वो माता की तरह प्रेम करते हैं, लेकिन माता जी का मारना और पुलिस के मारने में बहुत अंतर होता है। तो यमदूत नहीं मारता है भक्तों को, मार नहीं सकते, लेकिन हाँ भगवान अपनी तरफ से कुछ योजना करते हैं, थोड़ा थप्पड़ उप्पड़ मार करके वापस भक्ति में लेके आ जाते हैं। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, आप बोलिए, ऐसे बोलिए। एक से माता जी का प्रश्न कर। हाँ यस, भगवान का नाम लेते रहेंगे तो नॉनवेज छूट जाएगा और ये जगत भी छूट जाएगा। बहुत सारे इस प्रकार के लोग हैं जो लोग, लेकिन जम के माला करना चाहिए। हमारे ही, अब इसका सच्ची घटना है, मैं जेल में प्रीचिंग करने जा गया था, वो लड़का नॉनवेज खाता था, उसने मुझे बताया कि छोड़ दिया चेल चार माला करने से। अब ये हुआ, जैसे आप ये हॉल मानिए, हम हॉल में क्लास दे रहे हैं, वो जैसे दरवाजे में घुस रहा था एक लड़का बोला चलो खाने के लिए, मैं भरना नहीं चाहता कि क्या खाने के लिए, तो उसने नहीं नहीं मैं अंदर जा रहा हूँ, तो बोला अरे पंडित जी ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया। उसने ताना भी मारा फिर भी वो नहीं खाया, और आज तक वो लड़का नहीं खा रहा है। तो ये ध्यान देना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। बस वो लगे निष्ठापूर्वक कम से कम एक माला तो बढ़िया से करे, अगर वो करेगा तो कितने सारे प्रमाण है वो सब छूट जाते, अपने आप ही लगता है ये कैसे खाया जा सकता है। और कोई प्रश्न है? ओके, पहले प्रभु जी का प्रश्न। हाँ यस प्रभु जी। हाँ,
और जो कमी है जिनको सुख दुख भोगना है उनके लिए जो है देवराज से दूर आते हैं।
ठीक है,
तो बगैर दूर आए भी शरीर छोड़ा जा सकता है कि नहीं?
दोबारा प्रश्न कीजिए। यमदूत आते हैं कर्मियों के लिए,
कर्मियों के लिए जिनको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है।
ठीक है,
भक्तों के लिए जो है विष्णुदूत आते हैं।
ठीक है,
तो मेरा प्रश्न है कि बगैर दूर आए स्वयं भी जाया जा सकता है?
नहीं नहीं नहीं, हिसाब करने के लोग आते ही हैं क्योंकि इस चीज को मैं नहीं बोल रहा हूं, इस चीज को इसी प्रसंग में बोला गया था कि व्यक्ति तीन अपने मन से वचन से कर्म से पाप करता है तो इस कारण यमदूत आते ही हैं।
उसी के लिए मैं और स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछले एक क्लास में प्रश्न किया था कि भाई जो ज्ञान प्राणी है वो भगवान का ध्यान नहीं करते, निर्वेश ज्योति में प्रवेश करते, उनको कौन लेता है?
अच्छा प्रश्न है। देखिए दो प्रकार के लोग हैं, एक है ब्रह्मवादी और दूसरे हैं मायावादी। ब्रह्मवादी आध्यात्मवादी हैं, पहले अंतर समझ लीजिएगा। वो भी निर्विशेषवादी हैं लेकिन वह भगवान कृष्ण का अपराध नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, ये तीनों ही आध्यात्मवादी हैं। प्रभुपाद जी इसको पांचवें स्कंद में भी समझाते हैं, लेकिन भगवान का अपराध मत कीजिए। चार कुमार ब्रह्मवादी थे ना, अगर वो अपराध कर रहे होते तो वैकुंठ तक जाने की योग्यता कैसे दी जाती, पहले आप पूरा सुन लीजिएगा। तो ब्रह्मवादी प्रगति करते हुए, और हमने पिछली बार भी समझाया था, कुछ भक्ति का सम्मिश्रण करते हैं तो उन्हें ब्रह्म अनुभूति होती है, लेकिन मायावादी को कुछ प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे भगवान को अवमानना करते हैं, उनका उपहास करते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो, नहीं लास्ट लाइन क्या है, मम भूत महेश्वरम, उसके बाद बोलते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचितसा, उन्हें ज्ञान का भी लाभ प्राप्त नहीं होता। यानी कृष्ण के प्रति अगर वो अपराध करते हैं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अपराध है भगवान के प्रति, तो कौन लेने के लिए आएगा? बोल, सुनना चाहते हैं आप? महाराज जी से सुना यही है कि सबसे पहले तो पिटाई कर इनकी बहुत होती है। इस प्रकार से भगवान के प्रति अपराध करते हैं उनको नरक भी जाना पड़ता है। और इस चीज को 2.9-10 की कमेंट्री में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जो बोलता है कि भगवान का नाम भौतिक है, ये है वो है, बहुत बड़ा अपराध कर रहा है और उस अपराधी के लिए हेल में सॉरी नरक में पहले से ही रिजर्वेशन हो जाता है, बढ़िया बंगला दिया जाएगा और उनके बाद उसकी धुलाई की जाएगी। ठीक है, मायावादी लोग भगवान के अपराधी होते हैं, नो प्रॉब्लम। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात, ज्योति में कौन जाता है? ब्रह्मवादी, मायावादी नहीं। अब एक मिनट, मैं तो गलत बोल रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं गलत बोल रहा हूं, महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? ये भी है लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं ये प्रकाशानंद, वहां वहां से बैठ के बंगाल में बैठकर बोल रहे, ये प्रकाशानंद मेरे सुंदर रूप का खंडन करता है, इसको मैंने कुष्ठ रोग दिया है। समझ नहीं पा रहा है, भगवान ही पिटाई करते हैं ऐसे लोगों की, ब्रह्मवादियों की नहीं करते। मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं, इस कारण से उनको उनकी दुर्गति होना निश्चित है। प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं वे पेड़ क्यों नहीं प्राप्त करते हैं, वो इतने तमोगुण में, मैं कुछ श्लोक दिखा सकता हूं। तो ये लोग ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते हैं। अगर आपको याद हो हमने पिछली बार चर्चा किया था कि जो लोग, सॉरी मैं यहां चर्चा नहीं किया था, मैंने अपने ट्यूटोरियल में चर्चा किया था इसलिए आप नहीं समझ पा रहे इस बात को, कि जो लोग ज्ञान के क्या है वो स्थूल तुषाव घाती नाम, जो भक्ति को छोड़ के श्रेयाश्रितिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्ध ये तेषाम असौ क्लेश लविशिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव घाती नाम। जो भक्ति छोड़ करके ज्ञान प्रयास में लग रहा है और स्पेशली उसमें भक्ति का मिश्रण भी नहीं करता, वह व्यक्ति गिरता है, पक्का गिरता है, एकदम गिरता है। और इस चीज को हमने पिछली बार चर्चा किया था, हाँ यहां पर भी किया था मैंने, दो प्रकार के ज्ञानी हैं, एक जो ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है, भक्ति करता रहता है और वो है ब्रह्म प्राप्ति करता है, लेकिन एक व्यक्ति भक्ति को त्याग देता है, भगवान के प्रति अनादर करता है तो उसका पतन होता है, नीचे की योनि में जाता है, तो उसे ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। ये मेरे मत और आपके मत की बात नहीं है, आचार्य जो समझा रहे हैं उसको समझ लेना चाहिए। यस यस यस, मन भगवान में कैसे लगेगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मन वहां जाता है जहां हमारी आसक्ति होती है। तो एक बहुत सिंपल सी बात है ये, बहुत अब थोड़ा मैं सिंपल और थोड़ी डिफिकल्ट बात बोल रहा हूं। विषयाकार अंतःकरण, क्या शब्द बोला मैंने? विषयाकार अंतःकरण। हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है वह विषयाकार है, अर्थात भौतिक रूप रस गंध को पकड़ता है। ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहा है? कोई भौतिक शब्द बोल दिया जाए तो तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे कई बार मैं क्लास में पूछता हूं, कोई शब्द बोला, कोई वाक्य बोला, मैंने क्या बोला समझ में नहीं है, फिर मैं बोलता हूं आलू का दाम 10 रुपए किलो है, क्या बोला? हाँ आलू का दाम 10 रुपए किलो है। मैंने कहा उससे पहले भी तो हिंदी ही बोल रहा था, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है वो विषयों में फंसा हुआ है, विषयों को तो जल्दी ग्रहण कर लेता है, भौतिक वास्तु भौतिक ज्ञान को तुरंत पकड़ लेता है, आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे अंदर जाता है। तो अब जब हरि नाम करते हैं तो आगे जाके विष्णुदूत बोलते हैं गुणानुवादा खलु सत्व भावनात्, अर्थात भगवान का गुणानुवाद करने से, बोलने मात्र से, हरे कृष्ण बोलने मात्र से हमारा सत्व, सत्व मतलब हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारा चित्त, अर्थात हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। इसीलिए केवल बोलने मात्र से लोगों के चित्त में जो पाप की वासनाएं हैं, मांस खाने की, शराब पीने की, सब सब समाप्त हो जाती हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, गुणानुवाद खलु सत्व भावना, गुणानुवाद बोलने मात्र से व्यक्ति की हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अब जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, अर्थात विषय की आसक्ति, विषयाकार चित्त वो कम होगा, तो वह भगवान की तरफ पढ़ने लग जाएगा। जैसे हृदय में ये इच्छा आए कि पिक्चर देखने जाना है, तो यानी कि हृदय गंदा है, और हृदय में इच्छा आए कि भागवत सुनने जाना है, तो ये कहां से आ रहा है? ये भगवान के नाम उच्चारण करने से आता है। प्रभुपाद जी पांचवें स्कंद में बताते हैं कि पहले व्यक्ति हरे कृष्ण करता है और उसके बाद भागवत सुनता है और वो और प्रगति करता है। तो यानी शुरुआत में भागवत सुनने की इच्छा नहीं आती है, लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो भागवत सुनने की भी इच्छा आती है। कहां से आ रही है? हृदय शुद्ध होता है तो, समझ पा रहे हैं? तो यही चीज बार बार करेंगे तो भगवान में की स्मृति अधिक होती रहती है। और आप यहां देख रहे हैं भगवत कृपा से स्मृति होती। वैसे जो आपने श्लोक कोट किया था, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कारो, एक पे बहुत सुंदर टीका है। भक्त यही प्रश्न करते हैं, भगवान मन तो लगता नहीं है, तो कहते मेरे भक्त बनो। अरे अब भक्त कहां से बने, श्रवण कीर्तन करने में बहुत टाइम लगता है, तो कहते मैं थोड़ी पूजा कर दो। अरे पूजा की सामग्री नहीं मिलती है, बहुत शुद्धता रखती है, तो कहते कोई बात नहीं मुझे प्रणाम करो। तो चारों में से कुछ तो करो, ठीक है, लेकिन कम से कम भगवान के रूप को भौतिक मत मानो। मैं इस संबंध में 5 मिनट है तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हमने सुना है इस उदाहरण को कई बार कि जिस प्रकार पित्त का रोगी होता है उसको मीठी चीजें कड़वी लगती हैं, तो मीठी चीजें बार बार खाते रहने से वह स्वाद को ग्रहण कर लेता है। लेकिन इसमें श्रील रूप गोस्वामी आगे क्या बोलते हैं इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। किंत्वाद अराद अनुनिदम खलु सैव जुष्टा स्वादवी क्रमाद भवति तद गदम मूलहंत्री। हम बात कर रहे थे, हमने क्लास को रोका था स्नेह संयुक्त नाम लेने के ऊपर। स्नेह कैसे उत्पन्न होगा, श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। वो दो चीज बोलते हैं, कहते हैं आदर और अनुनिदम। आदर पूर्वक भगवान का नाम जप करने से और रोज करने से भगवान के नाम में रूप में गुण लीला में हमको टेस्ट प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा। क्या है इसका अर्थ? आदर के 3 एलिमेंट्स हैं, किसी को याद है? भगवान के नाम को भौतिक न मानना, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान के नाम की महिमा पर विश्वास होना शास्त्र सुन करके, पहली चीज। दूसरा ध्यान पूर्वक करना, और तीसरा है भगवान से कुछ भौतिक न मांगना। ये 3 चीजें भगवान का आधार है, क्योंकि अगर हम भगवान से कुछ भौतिक मांग रहे हैं, मांग सकते हैं एक लेवल की भक्ति के लिए, लेकिन अगर हम भौतिक मांग रहे हैं तो हम कह रहे हैं भगवान वो वस्तु आपसे अधिक मूल्यवान है, मुझे आपसे प्रेम में संबंध नहीं चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए। वो ठीक है, वो भी भगवान शुद्ध करेंगे हमको, लेकिन हम तेज प्रगति चाहते हैं तो इन 3 चीजों का ध्यान देना चाहिए। नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए उस समय और कोई कार्य ना करें। दूसरा ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें, और तीसरा कोई भौतिक इच्छा ना मांगे। ये स्वयं जनी निवास प्रभु ने मुझे बताया था, तो मैं आपके से शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नाम के मैं डूब रहा हूँ, लेकिन हम अलग अनुभव प्राप्त करते हैं। मेरा अनुभव है इस प्रकार से, रोज का अनुभव है कि मैं एकाग्रता से नाम करता हूँ, जब करने का प्रयास भी करता हूँ तो एक अलग प्रकार का दिव्य चिन्मय रस सुख प्राप्त होता है। और अगर तुरंत ही मैं ऐसे हरे कृष्ण कुछ करने लगा तो तुरंत उसका अनुभव महसूस करता हूँ कि नाम तुरंत रस प्रकट करते हैं बिल्कुल अलग तरह से। तो इसलिए इन 3 चीजों को ध्यान रखें, और अनुनिदम रोज करना। इस चीज को भागवत गीता में बोला गया है, अभ्यास के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह कौन से गुण में होता है भक्तों? सत्वगुण में। और अभ्यास का अर्थ ही है कि शुरुआत में आपको टेस्ट नहीं होगा, और अभ्यास का अर्थ ये भी है कि हम अच्छा करना चाहते हैं। ये बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, अभी समय समाप्त हो गया है, लेकिन अगर हम स्नेह संयुक्त नाम करना चाहते हैं, केवल नरक से बचने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।